नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। आज के इस एडिशन में हम तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है।
धन्यवाद मुदिता।
तो गिरीश, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अभी अभी खबर आई है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन अब बांग्लादेश की जगह UAE में होगा। जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा था, उसे देखते हुए ऐसे आशाएं व्यक्त की जा रही थी, संभावना थी इस बात की?
बिल्कुल, संभावनाएं तो पुरजोर थी, बस एक मुहर लगनी थी आधिकारिक तौर पे, जो आईसीसी ने पुष्टि कर दी है। तो यूएई यानी कि दुबई और शारजा, हालांकि वहां पर तीसरा एक और वेन्यू है अबुधाबी, तो लेकिन वहां पर नहीं होंगे मुकाबले। ऐसे भी बांग्लादेश के दो ही वेन्यू थे, ढाका और सिलेट, तो इस लिहाज से दो ही वेन्यू को चुना गया है यूएई में। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम बहुत ही विख्यात इंटरनेशनल है, बहुत ही काफी वहां पर बेहतरीन फैसिलिटीज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुकाबले देखते हुए दुनिया के अच्छे स्टेडियम्स में आता है। और शारजा का अपना एक ऐतिहासिक धरोहर है, सो शारजा स्टेडियम जहां पर बहुत रन बनते हैं, पिच एक पैराडाइज है। तो जो आईसीसी ने मेल अभी कुछ देर पहले, लगभग 10-12 मिनट पहले भेजा है, उसमें ये कहा है कि उनको काफी दुख है कि यह टूर्नामेंट वो बांग्लादेश में नहीं करवा पा रहे, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का मामला नहीं है, ये एक स्टेट मामला था जहां पर कई देशों ने भी एडवाइजरी अपने सिटीजन्स को जारी करी थी कि जो वो बांग्लादेश से ट्रेवल ना करे। तो इस लिहाज से देखते हुए बांग्लादेश सरकार, उनके गृह मंत्रालय, उनके इंटरिम सरकार और जो कि यूथ मिनिस्टर एडवाइजरी जो है यूथ मिनिस्ट्री के आसिफ महमूद सजीब हुई, वो चाह रहे थे कि और उनको 4-5 दिन का वक्त मिल जाए, लेकिन काफी अब कम समय रह गया है इस लिहाज से टूर्नामेंट कराने के लिए। तो हालांकि बांग्लादेश के पास होस्टिंग राइट्स रहेंगे, बेशक टूर्नामेंट यूएई में हो रहे हैं, दो पूल में, दो ग्रुप में टीम बनी गई है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, और ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। भारत का जो पहला मैच न्यूजीलैंड से सिलेट में होना था, अब वो नया शेड्यूल आएगा
उसमें
हालांकि डेट्स हो सकता है कि बिल्कुल बराबर सेम हो, लेकिन वो वेन्यू कौन से होंगे वो अब आईसीसी आजकल या कल में वो जारी कर देगी।
जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले हम नजर डाल लेते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में यानिक सिनर ने पुरुष वर्ग में और आर्यना साबालेंका ने महिलाओं का खिताब जीता। विंस्टन सलीम ओपन के डबल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और लुका पो की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अश्मिता चालिहा, मालविका बसोर और आकर्षि कश्यप जापान ओपन के महिला सिंगल्स के शुरूआती दौर में हारकर बाहर। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। और समोआ के बल्लेबाज डेरियस विसेव ने एक ओवर में 39 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया। तो गिरीश, शुरुआत करते हैं सिनसिनाटी ओपन से, जहां यानिक सिनर ने पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में आर्यना साबालेंका ने खिताब जीते हैं। विश्व के नंबर एक पुरुष खिलाड़ी यानिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 7-6, 6-2 से हराया। वहीं महिलाओं में विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी साबालेंका ने जेसिका पेगुला को 6-3, 7-5 से हराकर जीत दर्ज की। तो उम्मीद थी शायद इन रिजल्ट्स की कहीं ना कहीं।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है यानिक सिनर के लिए कि हिप इंजरी से जूझ रहे थे, उसके बावजूद भी एक तरफा मुकाबला 1 घंटा 37 मिनट में जीता। 23 साल के सिनर अब तक के सबसे युवा विजेता हैं। इससे पहले ब्रिटेन के एंडी मरे ने 2008 में जीता, तब उनकी उम्र 21 साल की थी। तो इस लिहाज से देखते हुए सिनर अभी युवा प्रतिस्पर्धा में आ रहे हैं, एक युवा पौध है। और सिनर ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, तो उसके बाद रॉटरम, मियामी और हॉल में भी जीत दर्ज की। हालांकि
पिछले कुछ समय से
अब उनकी नजर नजर जो है आने वाले अब यूएस ओपन में जो कि अब अगले सोमवार से ही है। तो हालांकि जो सबसे कड़ा मुकाबला उनको खेलना पड़ा वो था सेमीफाइनल में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से, काफी वो मतलब कि 7-6, 5-7, 7-6 जीते। लेकिन हमें यहां पर बात करनी चाहिए फ्रांसिस तेफो की भी, अमेरिकन खिलाड़ी है, राउंड ऑफ 16 और सेमीफाइनल में उनको कड़ी चुनौती मिली, उसके बाद उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। तो दोनों खिलाड़ियों का मानना था कि काफी वो थक गए थे सेमीफाइनल तक, और फाइनल इस लिहाज से खैर यानी सिन्नर के पक्ष में रहा। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो जहां पर स्टेबलिंकन ने जो बेलारूस की खिलाड़ी है वहां अमेरिका की जेसिका पेगुला को वो 6-3, 7-5 से हराया, और उसके साथ उनकी रैंकिंग में भी इजाफा हुआ, वो एक स्थान ऊपर आके नंबर 2 हो गई है मुदिता।
बिल्कुल। और वहीं विंस्टन सलेम ओपन के डबल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और उनके ब्रिटिश जोड़ीदार लुका पो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने उरुग्वे के एरियल बेहर और अर्जेंटीना के आंद्रे मोल्तेनी की जोड़ी को 6-4, 5-7, 10-8 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार और यूक्रेन के अलेक्सेंड्रा नेदवुसेव की जोड़ी से होगा। और श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि 3 से 8 दिसंबर तक मुंबई में 6वीं टेनिस प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, जिसमें भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल और फ्रांस के ह्यूगो गैस्टन भी मुख्य आकर्षण होंगे। तो गिरीश, क्या लगता है इस प्रीमियर लीग के बारे में? टेनिस प्रीमियर लीग 6वीं हो रही है, और
तो टेनिस प्रीमियर लीग इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। मैं बता दूं अपने श्रोताओं को कि पिछली बार पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वहां पर आयोजन हुआ था
जी।
और यहां पर जैसे आईपीएल की टीम होती है या किसी और लीग की टीम होती है, तो उसी तरह टेनिस प्रीमियर लीग में ही प्राइवेट लीग है जिसमें तीन खिलाड़ी एक टीम में होते हैं
जी।
तो काफी अच्छे मुकाबले देखने पर, सुमित नागल की आप बात कर रहे थे, हालांकि वहां पर पिछले साल दिसंबर में उनको रामकुमार रामनाथन से, निकी पनुचा से हार के सामना करना पड़ा था। वैसे देखेंगे कर्मल कौर ठंडी खेलती है कि नहीं खेलती है, पिछले इंजरी की वजह से एक मैच के बाद बाहर हो गई थी। तो काफी अच्छे ये इसमें क्या होता है कि आपको वो 15-30-40 पॉइंट नहीं मिलते, आप जितनी बार सर्व करते हैं जीतते जाते थे और पॉइंट बनते जाते हैं इसमें।
अच्छा जी जी। और वहीं बैडमिंटन में आज जापान ओपन में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा, मालविका बसोण और आकर्षि कश्यप जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के शुरुआती दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। आइए सुनते हैं प्राची की रिपोर्ट।
अश्मिता चालिहा को चीनी ताइपे की शीर्ष वरीयता प्राप्त ताई शुंग यिन ने 21-16, 21-12 से हराया। वहीं मालविका बंसोड़ को यूक्रेन की पोलिना बुहरोवा से 23-21, 21-19 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आकर्षि कश्यप को दक्षिण कोरिया की किम गायून ने 21-13, 21-12 से हराया। इसके साथ ही महिला वर्ग में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। मिक्स डबल्स में सतीश कुमार करुणाकरण और आद्या वरियात की जोड़ी इंडोनेशिया की रेहान नौफाल और लीसा आयु कुसुमावती की जोड़ी से 21-10, 21-18 से हार गई। पुरुष सिंगल्स में कल सतीश करुणाकरण का मुकाबला डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन और किरण जॉर्ज का सामना जापान के कांता सुनेयामा से होगा। वहीं मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क की जोड़ी जेस्पर टोफ और अमाली मैगलुंड का सामना करेंगी। महिला डबल्स में ऋतुपर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा डेनमार्क की माई सूरो और जूली फिन इप्सेन से मुकाबला करेंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
तो क्या लगता है गिरीश, क्या टॉप प्लेयर्स के नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है?
नहीं भुगतना, ये तो इंडिविजुअल जो है सब वो खेलते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। डबल्स का हाँ हो सकता है कि वो एक जैसे कई बड़े नाम जो इसमें मिसिंग है, वो सिंधु नहीं है, लक्ष्य सेन नहीं है,
प्रणव
नहीं है, श्रीकांत नहीं है और सात्विक चिराग
नहीं है,
गायत्री नहीं है, अश्विनी तनिषा नहीं है। लेकिन अब आने वाली जो पौध है उसको भी तो तैयार होना है वहां पर। लेकिन ठीक है, एक पहले राउंड में ये निकल गए, 3 महिला एकल खिलाड़ी थे। अब किरण जॉर्ज का मुकाबला होगा कल, फिर वहां पर पांडा सिस्टर्स हैं उनका डबल्स में होगा। तो तो इस लिहाज से देखते हुए ये ओलंपिक्स के बाद ये पहला बीडब्ल्यूएफ टूर्नामेंट है और लंबा एक सीरीज चलती है बीडब्ल्यूएफ की।
बिल्कुल, और केवल भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के भी जो खिलाड़ी थे, जो टॉप प्लेयर्स थे, चाहे पेरिस ओलंपिक के विमेन सिंगल्स की गोल्ड विनर आंसी यंग हो, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले, मतलब बड़े बड़े नाम इसमें नहीं है।
ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, टोक्यो गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर विक्टर एक्सेलसन जो एकल में पुरुष एकल में वो नहीं है, लेकिन काफी दूसरे नाम है। तो इस लिहाज से बैडमिंटन में आप देखेंगे खिलाड़ियों का जो दौर है, मतलब अभी बहुत लंबा, वो एक पेरिस ओलंपिक से वापस आए हैं, थके हुए हैं, तो इस लिहाज से पहला टूर्नामेंट कुछ दिन के बाद ही, तो उसको
थोड़ा सा
एक ब्रेक बनता है,
जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन यानी मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया है। सांगवान को पैरालंपिक अभियान के साथ जुड़े रहने का एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव है। मिशन प्रमुख के रूप में वो 84 पैरा खिलाड़ियों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल की अगुवाई करेंगे। 28 अगस्त से शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी 12 खेलों में चुनौती पेश करेंगे। तो क्या लगता है गिरीश, पिछले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट्स, 19 मेडल्स, इस बार
84 पैरा एथलीट, तो उसमें
क्या उम्मीद है?
उसमें नजर रहेगी भाविना पटेल ने, जो भारत के लिए पहला पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में मेडल जीता उन्होंने। यहां पर सिंगल्स और डबल्स में वो मुकाबला खेलेंगी, डबल्स में सोनलबेन पटेल के साथ खेलेंगी। उसी अभी तो आप सुनते आए होंगे कि एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में हमारे पैरा एथलीट काफी उनका एक काफी अव्वल रहे, लेकिन हरविंदर सिंह जैसे पहला आर्चरी मेडल जिताया था उन्होंने टोक्यो में, तो वो मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में वो खेलेंगे। तो इस लिहाज से आप देखिए 1972 में पहला हमें गोल्ड मिला था स्विमिंग 50 मीटर फ्रीस्टाइल में, तो मुरलीकांत पेटिकर से अब जो आते आते एक से पिछले साल 19, तो इस इतिहास में भारत सरकार और भारतीय खेल संघ जो पैरालंपिक कमेटी है वो काफी खिलाड़ियों को प्रभावित कर रही है।
जी बिल्कुल। और वहीं आज T20 क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। समोआ के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेरियस विसेर ने एपिया में T20 विश्व कप पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र क्वालिफायर में वनातु के खिलाफ एक ओवर में 39 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया। विसेर ने तेज गेंदबाज नलिन निपिको के एक ओवर में 6 छक्के मारे। इस ओवर में 3 नो बॉल्स भी शामिल थी, जिससे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रनों का नया रिकॉर्ड बन गया है। और अब हम चलते हैं शतरंज की ओर। द सिंगफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच बाजी ड्रॉ रही। और श्रोताओं को हम बता दें कि इस साल के अंत में इन दोनों के बीच विश्व चैंपियनशिप मुकाबला भी होना है। 17 साल के डी गुकेश अप्रैल में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैंपियनशिप खिताब के सबसे युवा चैलेंजर बने थे। वहीं आर प्रज्ञानानंदा और उज्बेकिस्तान के नौदरबेक अब्दुल सत्तरोव के बीच भी बाजी ड्रॉ रही है। और इसके अलावा लॉजेन डायमंड लीग 2024 में पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा के अलावा कांस्य पदक विजेता ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता याकूब वॉडलेज भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वे इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। डायमंड लीग का आयोजन 22 अगस्त को होगा, हालांकि पुरूषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा 21 अगस्त को होगी। तो नीरज का ये अगला प्रदर्शन होगा हमारे लिए, जिसका इंतजार शायद सबको है। हालांकि चोट की वजह से पहले लग रहा था कि शायद वो इसमें ना पार्टिसिपेट करें,
उन्होंने कहा भी है कि पहले वो इस पर फोकस करने का, फिर वो सर्जरी जो है उसके बारे में आई थिंक ग्रोइन एक इंजरी है उनको, तो उस बारे में फिर वो सोचेंगे। लेकिन अभी सारा वो एक नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट जो उनका अभ्यास थमता नहीं है,
जी बिल्कुल,
भारत आए सिल्वर मेडल जीतकर, फिर उसके बाद वापस एक अपने रूटीन काम में लग गए आगे की अगली सोच की।
जी बिल्कुल। और चलते चलते हम श्रोताओं को बता दें कि दिल्ली प्रीमियर लीग में आज ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पुरानी दिल्ली सिक्स को 5 विकेट से हराया। आज का दूसरा मैच सेंट्रल दिल्ली किंग्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच जारी है। टॉस जीतकर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अंक तालिका में ईस्ट दिल्ली राइडर्स शीर्ष पर है, जबकि वेस्ट दिल्ली लायंस दूसरे स्थान पर है और वहीं सेंट्रल दिल्ली किंग्स अंतिम पायदान पर है। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मुदिता।
और इसी के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।